नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे देश विदेश के समाचार, क्षेत्रीय संवाददाताओं से रूबरू होंगे, खेल मैदान की हलचल पर भी हमारी नजर रहेगी, बहुत कुछ रहेगा आधे घंटे के इस कार्यक्रम में। आज मैं हूं इस अंक में प्रियंका अरोड़ा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। हेलो अनुजा।
हेलो, नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू प्रियंका एंड टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू टुडेज परिक्रमा। With an extended weekend this time, many of you must have escaped the hustle and bustle of your city and gone to some peaceful destination to enjoy the natural beauty there. This is the best way to rejuvenate from our daily mundane routine to get back to work with all our energy on Monday.
बिल्कुल, और लगातार दो हफ्तों से extended weekends आ रहा है। Last time अभी Monday तक होली थी और इस बार Good Friday.
Absolutely. So wherever you are, tune in to our afternoon magazine to get all the updates on the national front, which along with news headlines also keeps you known with the developmental works going on in the interior regions of our country, which is sent to us by our correspondents. So first, the headlines.
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग रिक्वायरमेंट एंड गवर्नमेंट इज एक्सटेंडिंग डिजिटल फैसिलिटीज टू ऑल द विलेजेस।
सरकार ने सभी व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को सोमवार से गेहूं की स्टॉक स्थिति अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया।
At least 10 killed after a vehicle plunges into a gorge in Ramban district of Jammu and Kashmir.
आज गुड फ्राइडे के दिन विश्व भर में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
In badminton, PV Sindhu to face Supanida K. Thong of Thailand in women's singles quarterfinal of Madrid Spain Masters today.
और IPL क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स से।
And Priyanka, it's now time for our segment Data in India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about Good Friday.
The Lord of Love on this day, who sacrificed his life, saved the way, who born for the service of human beings, never think of his pain and suffering. He did this for our sins, so that good things prevail. Woe to him on this day. It's Good Friday today.
It was the day of Good Friday when Jesus was crucified by the Romans for the sins of humanity, and he went saying the words, Father, forgive them, for they know not what they do. Good Friday is being observed by Christians across the world today. Good Friday is a day of religious importance for Christians worldwide. It commemorates the crucifixion of Jesus Christ and his death at Calvary. This day is of great importance in Christian theology, for it marks the start of the Passion of Christ and preceding the celebration of Easter Sunday, which is a symbol of his resurrection. In Nagaland, Christians are holding special services and fasting. On the occasion, Chief Minister Nephew Rio has extended Good Friday greetings to all citizens. We have a report.
In Nagaland, Good Friday is being observed with prayer, fasting and almsgiving. Many believers are attending special church services to commemorate Jesus' suffering, while church bells muffled as a sign of mourning. Believers of the Catholic denominations in the state capital, Kohima, are holding a procession, carrying a wooden cross to symbolize the ultimate sacrifice of Christ Jesus for the mankind. The believers were also congregated in churches for special prayers to mark the day. For Akashvani,
जी हाँ, गुड फ्राइडे का दिन ईसाई धर्म के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। इसे ग्रेट फ्राइडे, होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। गुड फ्राइडे का पर्व मानव समाज को प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन जो लोग हैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, और कई जगह प्रभु यीशु की पदयात्रा भी निकाली जाती है। सूली पर लटकाए जाने की घटना को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है।
From the early days of Christianity, Good Friday was observed as a day of sorrow, penance and fasting. Across the world, Good Friday is observed as the day when Jesus Christ died on the cross for humanity so that he could save the people from their sins, and is observed as a public holiday in various countries. For Christians, it is the most sorrowful, somber and sacred day of the year, and is also referred as Holy Friday, as Priyanka just mentioned. Rather, the Christians around the world take it as part of a divine plan to save humanity. Jesus' crucifixion represents salvation and his miraculous resurrection. Dying on the cross was a sacrifice that Jesus made to offer salvation and eternal life to people who were sinful. And it is observed in different countries in different ways also, Priyanka.
Ji haan. और आपको ये भी बताएं कि गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार कहीं संडे को प्रभु ईसा मसीह दोबारा जीवित हो गए और 40 दिन तक लोगों के बीच उपदेश देते रहे। उनके दोबारा जीवित होने की घटना को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को चर्च में उनके जीवन के आखिरी पलों को दोहराया जाता है और लोगों की सेवा की जाती है। इस दिन गिरिजाघरों को बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है और लोग प्रभु यीशु की याद में प्रार्थना करते हैं और पद यात्रा निकालते हैं। इस दिन चर्च में कैंडल नहीं जलाई जाती और न ही घंटियां बजाई जाती हैं। गुड फ्राइडे को लोग अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, जैसे हमने आपको बताया, और बहुत ही सात्विक भोजन पर इस दिन जोर दिया जाता है।
To add to it, Priyanka, Catholics do not eat meat on Good Friday but can eat fish instead, and it is also customary to eat warm, hot cross buns. They normally fast on this day unless they have health issues or anything of that sort. And Protestants, on the other hand, do not have any food restrictions on Good Friday, but many follow the no meat rule like the Catholics. And if we talk about Germany, in Germany people participate in a solemn church service. People fast on this day, and some communities hold silent processions as well. If we talk about our country, some areas hold 3-hour long special services at noon, the time when Jesus is said to have been crucified. The lights are dimmed and eventually extinguished, with followers wearing black clothes and covering all religious pictures, crosses and icons in the churches and their homes to mourn the absence of God and the associated sadness. And as you said, after all this comes the Easter Sunday, which is a day of celebration because the Christ was reborn on this day. So overall, Good Friday represents the ultimate sacrifice Jesus made for the forgiveness of the sins of humanity. Therefore, Christians pay for the forgiveness for their sins on this day.
बिल्कुल, गुड फ्राइडे से करीब 40 दिन पहले ईसाई धर्म के लोग उपवास या व्रत का विधि विधान से पालन करते हैं। गुड फ्राइडे का अगर कहीं अर्थ होता है पवित्र शुक्रवार, और गुड फ्राइडे जरूरतमंद लोगों के प्रति दान करने और करुणा के कार्यों को समर्पित होता है। दूसरों के प्रति यीशु के निस्वार्थ प्रेम और सेवा के उदाहरण का अनुसरण करते हुए कई लोग सेवा के कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे बेघरों को उनकी सेवा करना, भूखों को भोजन खिलाना या बीमारों और बुजुर्गों से मिलना। तो ऐसे जो कई पुण्य के काम है जिन किए जाते हैं।
Right, just like Jesus gave up his life on earth to enable others to live a life free of sin, Good Friday encourages people to give things to others to help them live a better life.
अनुजा, वैसे हम कितने खुशकिस्मत हैं ना कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां हर त्योहार, हर पर्व, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, मिलजुल कर एकता से खुशी उल्लास के साथ मनाया जाता है।
यस प्रियंका, वेरी मच। एंड
अब तो लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो गया है, यानी चुनावी।
हमने दो दिन पहले भी यही कहा था कि अब पॉलिटिकल सरगर्मी जो है वो शुरू
हो
गई
है,
स्पेशली इन द नेशनल कैपिटल। And the woman voter was never as important as she is now. They are increasingly getting recognized to bridge the gender gap. To attract more women voters to polling booths, the Election Commission is planning to set up Sakhi booths in areas where fewer women voted during the previous elections. And these model booths will be an all-women one, with women staff conducting the process. In Odisha, the staff in these booths will wear an Odisha handloom sarees or dresses, and we have more on this from our Sambalpur correspondents.
The Election Commission introduces Sakhi booths in Odisha to attract female voters to polling booths. The staff in these booths will wear Odisha handloom. As per information, in every district of the state, at least 20% polling booths will be model booths, which will include youth managed polling station, PWD managed polling station, and around 10% Sakhi or all women managed polling station. The process has started, and the exact number of Sakhi booths to be set up in this state has not yet been decided. Earlier, these booths were known as pink booths. This year, the staff in these booths have been asked to wear Odisha handloom on the polling day, so they can wear whatever they feel like. Chief Electoral Officer of Odisha said the participation of women voters in the past election will be the first criterion for selection of places to set up Sakhi booths. With all women votes in their locality, more and more women will feel encouraged to come out and vote. Every vote counts, and try to ensure that each voter must take part in this festival of democracy. For Parikrama, Alok Chandra Bari, Akashvani, Sambalpur.
And in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile, giving details of number of phases, date of polling, number of seats, and other things related to elections.
आज हम सबसे पहले आपको हरियाणा लेकर जा रहे हैं और हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है और हमारे संवाददाता ने बताया है अश्वनी ने चंडीगढ़ से कि राज्य में 19,000 से भी ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और क्या है इस बारे में और जानकारी लेते हैं उनसे।
दूध दही के लिए जाने जाते हरियाणा में कुल 10 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ के नाम से जाने जाते इन सभी 10 के 10 निर्वाचन क्षेत्रों में 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई थी। हरियाणा में पंजीकृत मतदाताओं की जानकारी लेते हैं हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा से।
हरियाणा प्रदेश में 1,98,29,675 मतदाता हैं, जिनमें 5,25,840 पुरुष व 93,03,385 महिला मतदाता हैं। हरियाणा प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 19,812 है।
प्रदेश में उम्मीदवारों की जीत में 100 वर्ष से अधिक आयु के 10,879 मतदाता भी अपना योगदान देंगे। आकाशवाणी समाचार, अश्विनी कुमार शर्मा, चंडीगढ़।
अनुजा, जब हम इलेक्शन जब था पहली बार मतदान देने गए थे तो एक अंदर से एक अलग सी एक्साइटमेंट होती थी कि मतलब आज इस बार तो हम पहली बार मतदान करने वाले हैं। वहां का एनवायरनमेंट कैसे होता है, खासकर जो स्याही जब बड़ों की लगती थी ना तो हमें लगता था कि हमारी कब लगेगी।
वी ऑल्सो यूज टू फील टेंसेस कि हमारी कब लगेगी।
तो ऐसे ही मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी जो पहली बार मतदान देने वाले हैं उनमें के मन में भी ऐसी ही कुछ बातें चल रही होंगी।
यस प्रियंका, वी हैव अ रिपोर्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। लाइक इन जम्मू Kashmir, the youth, particularly the first-time voters, are enthusiastic to take part in the Festival of Democracy slated to commence from the next month. Elaborate security arrangements are being put in place by the Election Commission of India to ensure a free, fair and smooth polling in the entire Union Territory for 5 Lok Sabha constituencies. And to know more, let us listen to our Srinagar correspondent.
The voting in the Union Territory will be held in 5 phases. The first phase of voting will be held on 19th April for Udhampur Parliamentary Constituency. The elections in the second phase will be held for Jammu Parliamentary Constituency on 26th of April. Voting in the Kashmir Valley will start in the third phase as polls in Anantnag Rajouri Parliamentary Constituency will be held on 7th of May. Subsequently, on 13th of May, polls will be held for Srinagar Lok Sabha Constituency in the fourth phase, while as polls for Baramulla Lok Sabha Constituency will be held on 20th May in the fifth phase. So far, nominations for Udhampur parliamentary seat have been filed by 15 candidates from major parties. Senior BJP leader Dr. Jitendra Singh, Congress leader Chaudhary Lal Singh are some of the bigwigs that will battle it out in the first phase. There are 86,94,992 registered voters in the Union Territory. A total of 11,629 polling stations have been set up across the Union Territory. This is Sunil Kohl for Akashwani News from Srinagar.
अनुजा, बड़ी संख्या में जो लोग अब आ रहे हैं मतदान करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हमारे निर्वाचन आयोग का है जो उनको जागरूक करता रहता है, शिक्षित करता रहता है, और आपके जो वोट का है आपके उसका कितना महत्व है उस बारे में बताता रहता है।
सर्टेनली प्रियंका, इट इज अ ह्यूज टास्क ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अरेंज ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इट्स अ बिग पॉपुलेटेड कंट्री। and systematic voters' education and electoral participation, which in short is known as SWEEP, is an integral part in this election process. Ensuring 100% voting, ethical voting, and creating vigilance over the violations of Model Code of Conduct are the major objectives of SWEEP. And in this direction, the Chief Electoral Officer, P. Jawahar, and the District Election Officer, K. Kulothungam of Puducherry, have mounted several activities. We have more from our correspondent from there.
There are 28,921 first-time voters in the Puducherry parliamentary constituency, and the election department is motivating them to cast their vote on the polling day without fail. Since youths are using social media in abundance, Instagram Reels competition on the theme of elections was announced. Rallies are conducted and sports are organized to create a sense of responsibility in everyone's mind about the forthcoming general elections. Both CEO and DEO used all the opportunities to make popular the mobile applications introduced by the Election Commission of India. Since the nomination process was over in Puducherry, CEO has requested the voters to use the Know Your Candidate app to decide the candidate. This app gives the details of each candidate of the constituency as given in their affidavit, based on the details of qualification, criminal antecedents, assets and liabilities. The voters can judge the candidates and choose the best by applying their mind. C-Vigil app has become active from the date of announcement of the elections, and anyone can report unlawful activities and violation of Model Code of Conduct through this app. Voter Helpline app is one-stop solution for registration and election-related services. One can generate voter information slip through this app. SWEEP thus makes the voter as informed voter and helps to decide to whom to vote ethically. Moreover, the election department is trying to make this general election as green election. So both CEO and DEO appealed to the voters to avoid vehicles on polling day and reach the polling booths by walk. The slogan, Walk for Vote, is attracting all walks of life in Puducherry. T. Sivakumar, Deputy Director News, Akashwani, Puducherry.
तो ये थी चुनावी गतिविधियों के बारे में देश के विभिन्न क्षेत्रों की परिक्रमा. और अब आपको ये बता दें कि कल यानी 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाएगा. इस अवसर पर पूरे राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. राजस्थान, जिसे ब्रिटिश हुकूमत में राजपुताना के नाम से जाना जाता था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर की रियासतों को 7 चरणों में एकीकृत कर इस संघीय ढांचे को 30 मार्च 1949 में अंतिम रूप दिया गया और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया. इसके बाद से प्रत्येक वर्ष इसी दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है. इस साल 30 मार्च को राजस्थान अपनी स्थापना की हीरक जयंती मना रहा है. तो क्या खास रहेगा कल, इस बारे में जानते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र से.
पिछले कई सालों से राजस्थान दिवस पर 3 दिन के और 5 दिन के कार्यक्रम आयोजित होते थे. जयपुर की प्रमुख इमारतों पर रोशनी की जाती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव के कारण इसके आयोजन सीमित रखे गए हैं. जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्प ग्राम में आज से इस अवसर पर फूड और क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया जा रहा है. इसमें प्रदेश के लोग लोक संस्कृति, लोकगीत, वेशभूषा और खान पान का लुत्फ उठा पा रहे हैं. कल शाम 7 बजे जवाहर कला केंद्र में ही सांस्कृतिक संध्या आयोजित होगी. इसमें प्रदेश के लोकगीतों के साथ लोक नृत्यों की खनक सुनाई देगी. प्रदेश के कई अंचलों के लोक कलाकार इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि वे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लें. परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट.
And Priyanka, it's time now to take you all on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On the 29th of March 1857, freedom fighter Mangal Pandey created a commotion by appealing to his comrades to oppose the use of greased cartridges. The sergeant major ordered his arrest, but the Indian soldiers refused to carry out the order. It was at this point that Mangal Pandey struck a blow at the sergeant major and wounded him and a lieutenant in a fight. Pandey was immediately surrounded by the guards and other European officers in the presence of the commanding officer, General Hearse. Sensing that his arrest was inevitable, Mangal Pandey shot himself in the chest. He collapsed, bleeding, but was not fatally wounded. He was arrested and brought to trial. Mangal Pandey was sentenced to death by hanging along with Ishwari Prasad. Mangal Pandey's execution took place on the 8th of April and Ishwari Prasad was executed by hanging on the 21st of April, 1857.
We also remember freedom fighter Lakshman Nayak, who was martyred on the 29th of March, 1943. He led the freedom movement in Koraput district of Odisha and organized the tribal people to fight against inhuman practices like bonded labor. The tribal people called him Gandhi of Malkangiri.
Lakshman Nayak was born on the 22nd of November, 1899 in Malkangiri, Odisha. A member of Bhuyan tribe, Nayak was attracted to the national movement and became an active member of the Indian National Congress in 1936. He promoted Khadi and made people aware of the freedom movement. The mass participation of tribals in Koraput took a new dimension in the freedom movement after Congress formed a ministry in 1937. Lakshman Nayak took the charge of president of the Congress Primary Committee in Koraput in 1942. He also managed to mobilize the tribal people for various development works like construction of roads, building bridges and establishing schools. He also spearheaded the fight against oppression, sufferings and exploitation.
During the Quit India Movement 1942, Lakshman Nayak led a procession of tribal people to Maithili police station in Malkangiri district with the intention of hoisting the Congress flag on its building on the 21st of September 1942. As the police opened fire, five people died on the spot while 17 people were injured. The injured Lakshman was tried for his leading role in the demonstration and was sentenced to death.
At the break of dawn on the 29th of March, Lakshman Nayak gallantly marched towards the gallows in Behrampur prison. He wished his last.
If the sun is true, and so is the moon, it is then equally true that Mother India shall be independent.
Lakshman Nayak was buried inside the jail compound. Though Lakshman Nayak did not live to see free India, he remained imprinted in the minds of millions of people of India as the leader of leaders. We salute the great tribal freedom fighter.
We also remember martyrs Avatar Mishra and Makhdoom Bakhsh from Jaunpur, Uttar Pradesh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. They fought against the Tehsildar's troops in Jaunpur on the 20th of March, 1858. They were captured and hanged on the 29th of March, 1858. We salute the great sons of the soil.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar with AIR News.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में. इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा. ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. कल राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हरा दिया. इसके अलावा पीवी सिंधु मैड्रिड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज थाईलैंड की सुपर्णिता कार्तिथोंग के साथ खेलेंगी.
And in Miami Open Tennis, top-seeded India's Rohan Bopanna and his Australian companion Matthew Ebden have stormed into the men's doubles final. They defeated the fourth-seeded Marcel Granollers of Spain and Horacio Zeballos of Argentina by 6-1, 6-4.
The duo will face the second-seeded pair of Austin Krajicek of America and Ivan Dodig of Croatia in the finals tomorrow. This will be the 14th ATP Masters 1000 final for Bopanna, who has so far won 25 doubles titles. The semi-final victory will also help the 44-year-old veteran to regain the world number one position in the ATP doubles ranking.
और अब समय है जानी मानी हस्तियों को याद करने का. आज जन्म हुआ था प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक भवानी प्रसाद मिश्र का. भवानी प्रसाद मिश्र उन गिने चुने कवियों में से थे जो कविता को ही अपना धर्म मानते थे और आमजनों की बात उनकी भाषा में दिखती थी. उन्होंने कवियों को नसीहत भी दी, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख. अगेय जी ने दूसरे तार सप्तक में उनकी कविता को प्रकाशित किया. उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण काफी लोकप्रिय हुआ. भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1914 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ. उनकी कविताओं में नए भारत का स्वप्न झलकता है. उनकी कविताएं परिवर्तन और सुधार की अभिव्यक्ति हैं. उन्होंने खुद को कभी निराशा के गर्त में डूबने नहीं दिया, जैसे इन पंक्तियों से भी पता चलता है कि कितने भी गहरे रहें गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है. कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है. जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं. बे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं.
Yes, he was honored with Sahitya Academy Award in 1972 for his book Buni Hui Rassi, A Gandhian in Thought and Deeds. Mishra was deeply disturbed by the so-called effects of colonization in the country. And next, we move on to Siya Ram Sharan Gupt, who was one of the distinguished Hindi writers and was the younger brother of another Hindi literature doyen, Maithili Sharan Gupt.
जी हाँ, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त. उन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव रहा, इसलिए उनकी रचनाओं में करुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति मिलती है. और अगर उनकी रचनाओं की बात करें तो उनमें अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद शामिल है.
And moving on, the Indian actor, director and writer who was a radical figure in Bengali theatre and cinema for more than 40 years, Utpal Dutt, is having his birth anniversary today. His legacy of plays and other writing remain a valuable chapter in the Indian theatre history. Dutt appeared in some 200 films, beginning with Michael Madhusudan in 1950, and had considerable success as a director, particularly for Megh, Jhaar and Mother, and he was an intense dramatic actor. He did some of his best work with the directors Satyajit Ray, Mrinal Sen and James Ivory of the Shakespeare Wala.
बिल्कुल, उत्पल दत्त ने जैसे उनको कोई भी किरदार दिया हो, बहुत ही बखूबी से उन्होंने निभाया. खासकर अगर उनको हास्य अभिनेता के रूप में याद किया जाए तो बहुत ही उनकी किरदार को आज भी हम जब देखते हैं, सुनते हैं तो इतना ही आनंद होता है जैसे पहली बार उस किरदार को देखा हो. और खासकर गोलमाल का उनके द्वारा निभाया गया भवानी शंकर का किरदार.
आपका शुभ नाम है राम प्रसाद दशरथ प्रसाद शर्मा. बैठिए बैठिए. धन्यवाद सर. सुनील गावस्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है?
सुनील गावस्कर?
हाँ हाँ, क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी.
क्षमा चाहता हूँ सर, क्रिकेट के विषय में मेरा ज्ञान बहुत कम है.
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो आप ब्लैक पर्ल के बारे में कुछ बताइए.
जी हाँ, सीरियस से लेकर कॉमेडी तक के हर रोल को उन्होंने बड़ी संजीदगी से निभाया था. और आज ही हम याद कर रहे हैं सुरमा भोपाली शोले के, जिन्हें हम जगदीप के नाम से जानते हैं.
राइट, ही वॉज लॉन्च्ड एज अ लीडिंग मैन इन अ फ्यू फिल्म्स एंड ही एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ कॉमेडियन सिंस द मूवी ब्रह्मचारी. And some of the hit songs are also picturized on him, which one of them is being played today.
Maat bhi aa gayi ho to chal jaungi.
अब हमारा जाने का समय आ गया है, तो प्रियंका अरोड़ा और अनुजा कुमार को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति. नमस्कार.